ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। आपका ढेर सारा प्यार हमें मिलता रहा है। एक ऐसे परिवार की तरह हम अब इस टेलीविजन के प्रोग्राम से भी बढ़ते गए हैं। बहुत सारे आपके हमारे पास मेल्स आए हैं जिसमें आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। जब बार बार ये बात होती है कि परिवार है, तो फिर इतने बड़े परिवार को चलाया कैसे जाए। तो आज हमारा सौभाग्य खास माउंट आबू से हमारे साथ एक बहुत सीनियर ब्रदर आए हैं जो बहुत सारी बातें शेयर करेंगे। हमारे साथ अशोक भाई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
ओम शांति।
अशोक भाई आपसे शुरू करते हैं। आप ये बताएं, एयरफोर्स में थे आप, एक आर्म्ड फोर्सेस का बैकग्राउंड, तो क्या था एक तरफ इतना ऐसा प्रोफेशन जो कि काफी कुछ एग्रेशन मांगता है, एनर्जी मांगता है, कई बार कहा जाता है कि एंगर भी चाहिए, बहुत सारे वो सारी बातें चाहिए जिसमें एक थ्रस्ट होता है, और दूसरी तरफ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो प्यार की बात करता है, शांति की बात करता है, तो क्या चीज थी जिसने आकर्षित किया आपको यहाँ?
जब मैं वायुसेना में था आज से करीब 40 वर्ष पहले, तब तो मेरा लाइफस्टाइल भी जरूरत से बहुत ज्यादा एग्रेसिव था। एक एग्रेसिव होता है, एक जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव होता है। भाषा भी बहुत अधिक, हम लोग कहते नॉन वेजिटेरियन थी। और मुझे इतना आभास नहीं होता था जितना मेरे स्टाफ को पता लगता था, लेकिन अंतर में बाल्यकाल से मुझे थोड़ा अध्यात्म का शौक रहा है। ऋषिकेश आदि में पेरेंट्स के साथ जाकर के मैंने काफी साधु संन्यासियों की विजडम का लाभ लिया है। तो जब ब्रह्मा कुमारीज में पहली बार मैं आया तो मुझे नहीं मालूम पड़ा, लेकिन चेंज अपने आप होता चला गया। मैं समझता हूं कि मिलिट्री लाइफस्टाइल में एक फर्मनेस की बड़ी आवश्यकता होती है। वन हैज टू बी वेरी टफ, दैट इज अ बेसिक नीड। I won't say it is required in the armed forces, it is required probably everywhere. One has to be tough to be successful in life. And we normally in the armed forces see toughness with roughness. There is a lot of roughness, which I also had probably more than what I needed. And what I liked in this organization was that we can be tough, but we don't have to be rough for it to that extent.
जैसा आपने कहा है अशोक भाई कि tough रहें लेकिन rough नहीं रहना है, और हम बार बार कहते हैं rough tough तो होना ही पड़ेगा। What is actually meant by rough and tough?
शब्द में ही clarity है। Tough means very strong. आज हम actually बिल्कुल tough नहीं हैं। आपकी छोटी सी बात मुझे हर्ट कर जाए, मीन्स आई एम नॉट टफ, आई डू नॉट हैव द पावर। आपकी वो बात का प्रभाव मुझ पर इतनी जल्दी पड़ जाता है कि मैं अंदर से बिल्कुल हिल जाती हूँ। कोई परिस्थिति छोटी सी आ जाती है एंड मेरे में ताकत नहीं है उस परिस्थिति को फेस करने की, मीन्स आई एम नॉट टफ, आई एम वेरी वीक। दो ही शब्द होंगे ना, या इधर आई एम वीक और आई एम टफ। टफ मीन्स स्ट्रांग, जिसको हम इस प्रोग्राम के माध्यम से एक और शब्द की तरह यूज करते आए हैं, स्टेबिलिटी। क्या आप स्टेबल हैं? परिस्थिति आई, सिचुएशंस आए, लोग आए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ किया, छोटी परिस्थिति भी या फिर जीवन में बहुत बड़ी परिस्थितियां, लाइक फेसिंग एन इलनेस या फेसिंग द डेथ ऑफ अ वेरी क्लोज फैमिली मेंबर, उसमें भी सिचुएशन डिमांड्स कि हमें स्टेबल रहना है। वो स्टेबल हर परिस्थिति में वो ही रह पाएगा जो अंदर से बहुत टफ है। लेकिन रफ हम आज हैं, डेफिनेटली मोस्ट ऑफ अस आर वेरी रफ, क्योंकि हम बहुत जल्दी इरिटेटेड हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, फिर उसको उस लेवल पर नहीं रोकते तो वो अलग अलग रूप में बाहर आता। और जैसे भाई साहब ने कहा, भाषा भी, फिर आजकल हम कई बार स्कूल के बच्चों से बात करते हैं एंड वो कहते हैं हमारी लैंग्वेज पूरे स्कूल में ही बच्चों की लैंग्वेज हैज बिकम समथिंग जो आप किसी के सामने शेयर भी नहीं कर सकते। तो ये लैंग्वेज रफ होती जा रही है, जिसको उन्होंने बहुत स्वीटली कहा कि नॉन वेज भाषा कहें या फाउल लैंग्वेज कहें। सो वी आर ऑल बिकमिंग रफ एंड बट एट द सेम टाइम इंटरनली वी आर बिकमिंग वीक। लेकिन अंदर की वीकनेस को छुपाने के लिए बाहर हम उसको कैसे, अभी अगर मैं लीडर हूँ या मैं पेरेंट हूँ, मैं तो अपने आप को कमजोर तो नहीं दिखा सकता ना सबके सामने, तो उसके लिए फिर मुझे जोर से बोलना पड़ेगा, मुझे किसी सिचुएशन में शोर मचाकर बोलना पड़ेगा, आप भी मेरी बात तब मानेंगे क्योंकि मेरी वैल्यूज नहीं है, आई एम नॉट द राइट रोल मॉडल, तो मैं अपनी बात कैसे मनवाऊं, इट विल ओनली बी विद एंगर अग्रेशन एंड अथॉरिटी. तो वो रफ पार्ट हम यूज कर रहे हैं और अंदर से हम वीक होते जा रहे हैं, एंड मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी हमारी रफनेस को स्मूथ कर देती है और हमारी वीकनेस को टफनेस में कन्वर्ट कर देती है.
आई थिंक वेरी वेल सेड, क्योंकि यहाँ एक क्लैरिटी आती है. अच्छा भाई, अब ये रफ टफ जो जिंदगी आप जी रहे थे, और फिर क्या चीज थी जिसने आपको आकर्षित किया?
मुझे जहां तक याद आता है कि मैं बहुत रैश भी था और रफ भी था, दोनों चीजें थी. एंड प्रॉब्ली देयर वाज ए नीड टू स्टेबलाइज समवेयर, फाइंड ए मिडिल पाथ. एंड एज लक वुड हैव इट, आई वाज जस्ट कमिंग फ्रॉम माय ऑफिस फ्रॉम एयरफोर्स स्टेशन पालम टू माय रेजिडेंस इन किशनगंज एरिया, एंड आई हैपन टू कम अक्रॉस द राजयोगा मेडिटेशन सेंटर ऑन रिंग रोड इन द जोरी गार्डन. तो मैं काफी वहां से गुजरता था रोज, लेकिन व्हाइट क्लैड बहनों को देखता था तो मैं समझता था कि लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे इससे क्या लेना देना है. तो मुझ में कुछ, आजकल जैसे हम बॉडी कॉन्शियसनेस का वर्ड यूज कर लेते हैं, या जो पुरुषत्व का अभिमान होता है, वो जरूरत से बहुत ज्यादा था. और जब मैं एक बार वहां से गुजर रहा था तो एक सरदार जी ने मुझे इन्वाइट किया और योग सीखने के लिए कहा, मेडिटेशन सेंटर देखें और योग सीखें. एंड दी वर्ड एंशियंट राजयोगा यूज टू पुल मी, बिकॉज एनीथिंग एंशियंट ऑफ माय कल्चर हैज बीन ऑलवेज माय इंटरेस्ट. तो इसलिए मैं गया उस दिन. पहले तो मैंने उसे कहा कि दोपहर का टाइम है, मैं खाना खा के आऊंगा शाम को. सो व्हेन आई वेंट इन द इवनिंग, इट वॉज ए वेरी वेरी साइलेंट एटमोस्फियर देयर, रादर टू साइलेंट फॉर मी, लाइक डेड साइलेंस इट वॉज. और मैं तो अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करके दम से दम दबटन दबा टक 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 सीढ़ी चढ़ते हैं, और दरवाजा खटखटाया मैंने, लेकिन दरवाजा खुला हुआ ही था और एक अंदर से एक डिवाइन टाइप ऑफ ए सिस्टर अपीयर्ड सडनली. और मैंने कहा कि मैं योग सीखने आया हूं, लेकिन आपके घर में तो बिल्कुल ऐसे डेड साइलेंस एटमोसफियर है, इसमें कैसे हम योग सीखेंगे? तो कहती ये बेटर है एटमोसफियर योग के लिए, आप आज ही सीख लीजिए. तो ऐसे आई डोंट नो योर एबीसी, हाउ आर यू गोइंग टीच मी. She gave me only a 30 seconds course. बस इतना ही बताया कि you are a pure soul, a shining star, and you are a very peaceful soul. आप एक आत्मा है शांत स्वरूप. और बिठा दिया गया मुझे. लेकिन जब योग कंडक्ट किया उस बहन ने और उसकी दृष्टि मेरी तरफ आई, तो मुझे लगा कुछ कूल ब्रीज सी ब्लो कर रही है, विच मेड मी फील, बिकॉज ऑफ माई प्रीवियस बैकग्राउंड ऑफ माई यंगर एज, कि इस आत्मा में ताकत तो है, पावरफुल वाइब्रेशन भेजती है और ऐसी जैसी एयर की कूलिंगनेस उसमें से फील होती है. तब मैंने ये संकल्प शुरू किया. पहले तो मैं यही सोच रहा था कि लोग क्या कर रहे हैं सुबह से, इनका वो ज्योतिष रूप जग रहा है, एक प्लास्टिक गॉड है इनका, मैं यहां से लाइट बुझा दूंगा तो इनका भगवान मर जाएगा, बेचारों का योग टूट जाएगा. एग्जैक्टली मैं यही सोच रहा था, मुझे अच्छी तरह याद है वो दिन. और फिर जैसे ही वो वाइब्रेशन आई और मैंने चिंतन किया कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूं ज्योतिष रूप, तो मुझे ऐसा लगा कि लाइट का आकार इस शरीर से निकलकर ऊपर जा रहा है. आई फेल्ट एक्सट्रीमली लाइट with the subtle body and very very peaceful, and I stayed in that state for about 50-55 minutes. मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है, 18 January 1972 को. और जब वो योग खत्म हुआ और सब नीचे उतरे और बातें कर रहे थे, तो मुझे लगा था लोग क्यों बातें कर रहे हैं, चुप नहीं रह सकते हैं. सो एकदम जैसे 100 degrees का टर्न होता ऐसा हुआ, which gave me conviction कि इनके पास कोई ऐसी टेक्निक तो है कि ये किसी भी समय आपको एक बड़ी लाइटनेस का और एंजेलिक स्टेज का एक्सपीरियंस करा सकते हैं. एंड दैट हैज बीन माय पुल एंड द रीजन फॉर कंटिन्यूइंग विद द ऑर्गेनाइजेशन, कि मैं कभी भी डिटैच हो सकता हूं सिचुएशन से और एक बड़ी लाइट स्टेज में, बड़ी पीसफुल स्टेबल स्टेज में जा सकता हूं.
हर पल की ये फीलिंग ऑफ बीइंग फ्री कभी भी मैं कर सकता हूं,
बीइंग इन कंट्रोल.
हाँ, एंड देन मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है, मैं अभी जिस भी सिचुएशन में हूं उसमें मैं कैसे रहना चाहता हूं, क्या मैं वो स्ट्रेस में ही रहना चाहता हूं, क्या मैं वो पुल डाउन ही रहना चाहता हूं, क्या मैं उस सिचुएशन को अपने ऊपर हावी रहने देना चाहता हूं, या लर्निंग दिस टेक्निक. एंड देन यू डोंट नीड एनीवन एक्चुअली, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं थी। ये आज हमारे साथ बहुत परिवार के लोग जुड़े हैं, वो इस ताकत को प्राप्त करना चाहते हैं,
इसको ही जो हमने इतनी बार शेयर किया कि सोल कॉन्शियसनेस, लेकिन भाई साहब ने भी उसको अनुभव कहाँ किया, सेंटर पर जाकर, जो बार बार ये बात शेयर हो रही है कि सेंटर पर जाएं। टीवी के माध्यम से आप प्रोग्राम देख रहे हैं, लेकिन उससे आपको परमात्मा का ज्ञान मिल रहा है, द नॉलेज, लेकिन वो एक्सपीरियंस में कब कन्वर्ट होगा, जब आप एक ऐसे स्थान पर जाएंगे जहां पर बहुत सारे भाई बहने बहुत समय से उसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, द एनर्जी इज इन द एयर, इट्स देयर ऑलरेडी, फिर आपको गाइड करने के लिए वहां बहने या भाई होंगे जिसको इस जो इस एक्सपीरियंस को बहुत सालों से करते आए हैं। अब जैसे भाई साहब ने कहा कि वो बहन सामने बैठी, उन्होंने दृष्टि दी, अब दृष्टि दी मीन्स वॉट, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी इसमें दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट कि हम ग्रीट कैसे करते हैं एक दूसरे को, तो ना सच में ना न झुकने की, पैर छूने की, हाथ जोड़ने की ये जरूरत नहीं होती है, हम दृष्टि से एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, क्योंकि हमारी जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, वो सबसे ज्यादा क्लियर हमारी आंखों में आती हैं, ठीक है। एंड दृष्टि मीन्स एन आई टू आई कॉन्टैक्ट, एंड क्योंकि आत्मा यही है, जस्ट अबव द आईज, यहाँ फोरहेड के सेंटर में अंदर एक्चुअली, लेकिन व्हेन यू हैव एन आई टू आई कॉन्टैक्ट इट्स मोर ऑफ ऑल्सो आत्मा का एनर्जी टू एनर्जी एक्सचेंज। तो दृष्टि मतलब जब हम एक दूसरे से मिलते हैं ओम शांति कहते हैं, नॉट जस्ट सेइंग द वर्ड ओम शांति, लेकिन वो कॉन्शियसनेस आई एम अ पीसफुल सोल, तो वो थॉट, अगर इफ आई क्रिएट अ थॉट आई एम अ पीसफुल सोल एंड मैं आपको वो एनर्जी मैं क्रिएट करती हूँ, लेकिन जैसे आपको देखा तो वो एनर्जी आपको रीच करेगी, दिस इज दृष्टि। तो क्योंकि वो बहन मेडिटेशन में बैठी थी, वो सोल कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस कर रही थी वेरी डीप स्टेज, तो ऑटोमेटिकली जो सामने आकर बैठे उनको उसका इफेक्ट हुआ, उसकी मदद मिली, कोई ज्ञान नहीं था, कोई नॉलेज नहीं, कोई पहला एक्सपीरियंस नहीं, और फिर भी इतना सुंदर एक्सपीरियंस। दिस इज व्हाट वी हैव टू गो टू द सेंटर एंड टेस्ट, क्योंकि हर सेंटर पर हमें बहने मिलेंगे ऐसे, एंड उनका एक्सपीरियंस और उनका एनर्जी हमें एक्सपीरियंस करने में मदद कर देगा। और जैसे भाई साहब ने कहा, एक बार किया फिर माउंट आबू गए, दो बार किया एक्सपीरियंस हो गया, तो कन्विक्शन हो जाती है कि ये एक्सपीरियंस हम कर सकते हैं, धीरे धीरे विधि सीख ली, उसके बाद अपने आप कर सकते हैं, कभी भी कहीं भी कैसी भी सिचुएशन में, लेकिन समवन विल हैव टू हेल्प मी इनिशियली। तो जैसे ही सामने चाहे कोई बहन है, दादी है, कोई भी है, क्योंकि वो आत्माएं उस सोल कॉन्शियस स्टेट में है, आप जिसके सामने जाएंगे उनकी कॉन्शियसनेस हमारी कॉन्शियसनेस को क्रिएट करने में मदद कर देती है। दिस इज व्हाट वी विल रिक्वेस्ट एवरीवन अगेन टुडे कि जैसे भाई साहब ने एक्सपीरियंस किया, लेट्स गो एंड ट्राई।
बिल्कुल, कितनी बार आपके हमारे पास ये मेल्स आते हैं कि ये जो योग है या ये जो एक्सपीरियंस है ये हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं घर पर कर रहे हैं, अपने एफर्ट्स कर रहे हैं, तो आसान हो जाएगा।
घर की एनर्जी आज कैसी है? सी वी ऑल हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी कि आज हमारे परिवार में, आज हमारे ऑफिस में दो चार जितने भी लोग हैं, मोस्ट ऑफ देम आर गोइंग थ्रू स्ट्रेस, तो घर की एनर्जी फील्ड कैसी है? अब अगर एनर्जी फील्ड स्ट्रेस की है और हम सोल कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एनर्जी फील्ड ईगो और बॉडी कॉन्शियसनेस की है, हम उसको करने की कोशिश कर रहे हैं जबकि हमने पहले नहीं किया है बहुत समय से, इट्स अ चैलेंज। अगर हम उसी चीज को हम ही करें लेकिन ऐसे स्थान पर करें जहां एनर्जी फील्ड प्योरिटी की है, हमारे लिए वो ईजी हो जाएगा, और कुछ बार वहां करने के बाद हम उसको फिर धीरे धीरे घर पर भी कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट तो चाहिए ना। टेस्ट चाहिए कि वो है कैसी चीज, फिर उसको हम कहीं भी बना लेंगे खाने को, लेकिन रेसिपी वहां जाके ले लेंगे।
पहले एक बार उसको अनुभव करके आए, फिर उसका टेस्ट पता चल जाएगा, फिर हमें पता चलेगा कि हम जो अपने घर पर या जब भी एफर्ट कर रहे हैं वो हो रहा है कि नहीं। इनफैक्ट अशोक भाई जी,
हॉज में तो वैसे भी जो सैल्यूट किया जाता है उसमें आई टू आई कॉन्टेक्ट मस्ट होता है, एंड वी शो दैट आई डोंट हैव वेपन, यू नो Your hand is free. That's how we make a trustworthy contact with each other, जिसे normal हम regards pay करना कहते हैं। तो ये जो salutation का process है एक जवान और उसके senior में, officer to officer senior में, तो वो trustworthy contact इसीलिए होता है कि eye to eye होता है, it is a full confidence that he is my man, and then without weapons means you can have faith on each other.
Oh, that's
that's what salutation means actually.
Very good. You know, ये हमें कई चीजें नहीं पता थी छोटी छोटी. अशोक भाई, आपका ये अनुभव माउंट आबू तक भी लेके गया, आपको इस तरफ ज्ञान ने भी खींचा. आगे की जर्नी कैसे रही? आप जॉब में भी रहे?
Of course, I continued for 12 more years before I decided to dedicate my life.
और पूरा टाइम आप ये lifestyle भी जीते रहे?
बहुत अच्छी तरह से जी सके.
कैसे पॉसिबल हुआ? क्या कुछ था
इसमें? मुझे कुछ जो मेन बात समझ में आई इस संस्था में, वो बहनों का जो अपने जिज्ञासु जिसे हम कहते हैं क्लास के स्टूडेंट्स को हैंडलिंग कैसे करती हैं, दैट वाज समथिंग वर्थ लर्निंग. लाइक उनके स्वीट बिहेवियर से, मेडिटेशन से हम ऑटोमेटिकली थोड़ा स्वीट हो जाते हैं, वो तो स्वाभाविक है. लेकिन जो वो केयर करती है और जैसे आपको संभालती है एक माँ की तरह, that was something wonderful. Like I was just 4-5 days in this organization, aur mujhe behan ji bata rahi thi ki hum log projector se seva karne ke liye jaate hain. Un dino projector mein na ek set hota tha aisa jisme slides manually move kiya karti thi, koi computers ka zamana wo nahi tha. To projector mein slide projector hota tha, ek ek slide dal ke aur aap usko dikhate the. To it was quite heavy machine. To lekar ke mujhe kamre se utha ke dusre kamre mein rakhne jana tha. और जैसे मैं उसे उठा के चला, मैं पूरे ध्यान में नहीं था, मेरा पांव कहीं हल्का सा टकरा, थोड़ा गिर गया प्रोजेक्टर और चूरा चूरा हो गया. नाउ आई वाज इमीडिएटली वरीड कि अब झाड़ पड़ेगी कस के, कितना बड़ा नुकसान कर दिया आपने. बट आई वाज अघास्ट, मुझे वो दिन याद है अच्छी तरह. गिरते ही क्या, इसमें कोई चिंता की बात नहीं मेरे भाई, ये घटना तो आज घटित होनी ही थी. एंड शी मेड इट सो लाइट कि छोड़ो छोड़ो, इसकी बात बाद में करेंगे, हम आपका कोर्स कंटिन्यू करते हैं. तो आई वाज रियली टच्ड कि इतना बड़ा नुकसान होने के बावजूद भी उस बहन ने उसको कैसे लाइटली ले लिया और फिर कोर्स कंटिन्यू करते हुए अपनी जॉब से भी उसकी कोई स्टेज बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुई और उसने अच्छी स्थिति से मुझे समझाया. और मैं समझता हूं कि किसी को सुधारने का तरीका यही होता है कि आप उसे प्यार से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास कराएं तो वो ज्यादा अच्छी तरह सीख सकता है, बनस्पत झाड़ के उसे कराएं.
ये बात शिवानी की पालना की जहां बात आती है, पेरेंटिंग की जहां बात आती है, कितनी बार हमारे पास ये कॉन्फ्लिक्ट होता है कि डांटेंगे नहीं तो बात नहीं मानी जाएगी, गलती बार बार करता जाएगा. क्या बार बार करते जाने थे? क्या वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाना चुप रहकर या प्यार से, इनफैक्ट एक भी शिकन भी नहीं आई होगी ना?
कुछ नहीं, शी कंटिन्यूड स्माइलिंग, दैट वाज ग्रेट.
ये और उनकी भी स्थिति और बच्चे के फिर आगे.
एक्चुअली जिससे गलती हुई ना, प्रोजेक्टर टूटा, तो वो तो प्रोजेक्टर टूटता है, फिजिकल चीज है. जैसे भाई साहब ने कहा, शाम को गए मार्केट से नया प्रोजेक्टर ले लिया. लेकिन जब हमें कोई डांटता है तब हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस टूटता है, हमारे सेल्फ एस्टीम टूटती है. उसको आप शाम को जाके बाजार से खरीद के नहीं ला सकते. नाउ दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन फैमिलीज, बच्चों के साथ या ऑर्गेनाइजेशन में एक लीडर के साथ. चीजें टूटनी है ही, गलतियां होनी ही है. इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ परफेक्ट वर्ल्ड वेर एवरी वन इज गोइंग टू बी परफेक्ट, दैट्स नॉट पॉसिबल. तो ये गलतियां होनी ही हैं, लेकिन उस सिचुएशन में एक स्टेबल लीडर वही होगा जो ज्यादा ध्यान उस प्रोजेक्टर का नहीं लेकिन उस व्यक्ति का करेगा, क्योंकि वो ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिलेशनशिप्स ही सबसे इम्पोर्टेंट हैं. और जैसे जिससे गलती हुई वो उस समय एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे डांट पड़ने वाली है, तो पहले गलती का गिल्ट कि मेरे से टूट गई, फिर डांट का फियर, ये सारी चीजें हमारे अंदर एक कितनी ऑलरेडी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर देती है. उस समय हमें क्या चाहिए? जस्ट समवन टू कम एंड लिफ्ट अस अप विद देयर लव, कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग. ऐसा थोड़ी है कि जिससे गलती हुई उसको नहीं पता होगा कि मेरे से गलती है. डू वी नीड कि कोई उस समय हमें जोर से या डंडे से समझाए कि तुम्हारे से गलती हुई है? वो तो हो ही गई है, मुझे पता है. लेकिन मेरे टूटे हुए सेल्फ कॉन्फिडेंस को, नहीं तो कई बार जब गलती हो जाती है हम खुद ही डरते हैं. ये तो चलो एक प्रोजेक्टर है, लेकिन कई बार हम वही काम करने से दूसरी बार डरते हैं कि कहीं मेरे से फिर से गलती हो गई तो और नुकसान हो जाएगा. लेकिन सामने वाले का प्यार हमारे वो सेल्फ कॉन्फिडेंस को वापस रीबिल्ड कर देता है, एंड देन यू आर अ स्ट्रॉन्गर पर्सन फॉर द नेक्स्ट टाइम. रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान आई थिंक एवरीवन हैज, एंड ये सिर्फ बड़े एज के लिए नहीं, अगर वो कोई 3 साल का बच्चा भी है ना, उस समय प्यार से कर लिया तो आपको यू हैव अ स्ट्रॉन्गर पर्सन विथ यू. एंड वो इतना टच होता है ना किसी को कि मुझे डांटा नहीं, नेक्स्ट टाइम वो उसी चीज को ऑटोमेटिकली और ध्यान से करें.
ये जो अब बेल्जियम ग्लास के फ्लावर वासेस है, जो साफ करते करते टूटते हैं
सर्वेंट से, कौन ज्यादा वैल्यूबल है? हाँ,
कई बार सर्वेंट से भी टूटते हैं, ग्लास वेयर टूटता है इतना एक्सपेंसिव, और फिर एक्चुअली क्यों हमें गुस्सा चढ़ता है? क्योंकि हमारी अटैचमेंट भी थी उस चीज से, हमने इतना महंगा खरीदा था और यू नो इन्होंने अपनी गलती से तोड़ दिया।
किसी ने भी गलती से, अगर हम साफ कर रहे होते तो हमसे भी टूट जाता। पॉसिबिलिटी तो देखो कि कोई भी चीज है, किसी के भी हाथ से कहीं भी कुछ भी हो सकती है, और सिर्फ टूटने की नहीं, इट कुड बी एनी एरर, ये किसी से भी हो सकती है, लेकिन हमारी अटैचमेंट या कहें हमारा प्यार लोगों से कम, उन वस्तुओं से ज्यादा हो गया।
मैं कह रही हूँ कि हमें भी तो एम्पावर करेगा अगर हम नहीं डांटेंगे।
नहीं, इट्स नथिंग, ये एक्चुअली हमारा खालीपन है, इट्स वो सिचुएशन स्पेसिफिक भी नहीं होता, हमारा खालीपन है, हमारा अक्यूमुलेटेड स्ट्रेस और एंग्जाइटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड फिर हम अपने अंदर की कमजोरी को पावर के रूप में कैसे दिखाते हैं? इट्स बाय लुकिंग फॉर दीज लिटिल लिटिल सिचुएशंस जहां हम लोगों के ऊपर थोड़ा सा अथॉरिटी से बिहेव कर सके। तो ये हमारा, उनकी गलती कम और हमारी कमजोरी ज्यादा सामने लेकर आता है।
अगली बार कुछ टूटता है घर में या ऑफिस में,
टूटे भी नहीं है उससे बड़ी भी गलतियां।
तो हमारी कोशिश क्या रहेगी? हमारी कोशिश रहेगी कि हम खुद कितने स्ट्रांग हो सकते,
लेकिन सिर्फ बाहर से नहीं,
अंदर से। एक्चुअली बाहर से ट्राई करेंगे तो अंदर भी धीरे धीरे होते जाएंगे। हाँ,
लेकिन कई बार अंदर से बहुत ऐसे ऐसे होकर बाहर से मिठास से बात करेंगे, इट वोंट वर्क, एंड फिर नेक्स्ट टाइम उसको याद दिलाएंगे
पिछली बार भी तोड़ा था।
हाँ, तो देन वो अंदर से नहीं हुआ था।
इस इंसिडेंट ने एक मेजर चेंज मेरे लाइफ में लाया और तब से मैंने गाली देना छोड़ दिया। मैं कम से कम गिनकर 300-350 गालियां रोज देता था, मुझे अच्छी तरह से याद है। और इतना सडन चेंज था वो कि मेरे स्टाफ अलग थे, सर कदे कदे से काट लिया करो, फॉर ए चेंज एट लीस्ट यू शुड डू इट सर। आई सेड नो, माई क्वोटा इज ओवर, आई कैन मैनेज विदाउट इट, एंड थिंग्स आर डेफिनेटली बेटर, एंड दी फंक्शनिंग ऑफ द डिपार्टमेंट विच आई वॉज रनिंग वॉज डेफिनेटली मोर स्मूथ, एंड देर वॉज a real change in the cooperation level of my own subordinates, and we could do things more effectively without using that abusive language which I used to feel earlier it was a must. ye mere ko ek bahut badi satisfaction thi, us ek experience ne mera ek portion of lifestyle to change kar hi diya.
बिल्कुल, और it's a big change actually. aaj hamare paas bahut sare log hain jo actually kabhi mante hi nahi hai ki ye koi galat hai. जिंदगी ऐसी हो चुकी है, हमने ये मान लिया कि इसके बिना जिंदगी जी नहीं सकते हैं। तो आज आपने अपने अनुभव से हमारे साथ ये शेयर किया, और कुछ बातें छोटी छोटी और होती गई जीवन में जो हमारे साथ शेयर करेंगे?
क्योंकि एक फाइनेंशियल लॉस का मैटर था और मैं सेंटर में उसके बाद रेगुलरली जाता रहा, और एक बड़ी अजीब बात थी कि मुझसे कोई पैसा नहीं मांगता था। 3 महीने तक मैं रेगुलरली क्लास में गया और सोचता रहता था कि बहन कभी तो मांगेगी, आफ्टर ऑल ये चलाती कैसे संस्था का, लेकिन उसने नहीं मांगा। मजबूर होकर मुझे एक दिन पूछना पड़ा, मैंने कहा दीदी आप संस्था कैसे चलाती हो? क्योंकि मेरे 60 भाई हैं ना क्लास में, सब मिलकर के वॉलंटरी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मैंने कहा मैं भी तो आपका 61वां भाई हूं, आप मुझसे क्यों नहीं मांगते? कि मांगूंगी तो फिर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रहेगी क्या? एंड टू बी वेरी फ्रैंक, मेरा लाइफ स्टाइल 3 महीने में इतना चेंज हो चुका था। आई हैड ओनली 2 हैबिट्स, एक मूवीज बहुत देखता था मैं, और वो भी दोस्तों के साथ ले जाके, उनकी टिकट भी मैं खुद ही खर्च करेंगे, और स्टार होटल में जाके थोड़ा शाम को कभी कॉफी पीनी है या कुछ ऐसा हल्का सा रिफ्रेशमेंट करना तो भी दोस्तों के साथ जाते थे। दैट यूज टू टेक अबाउट 1/3 ऑफ माई सैलरी, उन दिनों तनख्वाह बहुत थोड़ी होती थी, इट वॉज ओनली अबाउट 600 रुपीज और सो, लेकिन 600 रुपये बहुत होते थे। वी कुड अफोर्ड टू गो टू ए स्टार होटल फॉर ए कॉफी और गो फॉर ए मूवी एंड ऑल। तो वो मुझे अंदर में खलता था कि मेरी 1/3 सैलरी संस्था में आने की वजह से बढ़ गई है, मतलब नाउ आई एम 200+। तो मैंने बहन को पूछा कि आप कैसे चलाती हैं, उसने बताया। मैंने कहा अच्छा फिर मुझे भी शुरू करना है, मेरी पॉकेट में बहुत सेविंग शुरू हो गई है, मैं कितना दूं आपको? कि फिर वही बात, कितना देना है ये भी वॉलंटरी। तो मैंने कहा दीदी कुछ तो गाइडलाइन चाहिए मुझे, लेट अस बी फ्रैंक अबाउट इट, आपकी आइडियोलॉजी आपके पास है, लेकिन मुझे ये बताइए कि मैं कितना करूं। तो उसने पूछा कितना बचता है? कि 200 रुपया। तो ऐसा करो 50-50 कर लो, 50% आप संस्था में दे दीजिए, और वो डोनेशन बॉक्स रखा हुआ है, मेरे हाथ में नहीं देना, मैं हाथ में नहीं लेती हूं, डोनेशन बॉक्स में डाल दीजिए, 50% आपने घर। सो व्हाट आई कुड अप्रिशिएट वाज ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट एंड कंट्रीब्यूशन लेटर। उससे कितना दिल करता है आदमी का देने का, और दे के भी ही इज गेनिंग, मेरे घर में भी 100 रुपया बढ़ता है and I can feed my family better than I could do earlier.
Another thing which I really liked is ki voluntary hai to mangna nahi hai. You know, this is so beautiful. I don't want to say, lekin kitni baar ki kaise chalengi cheeze kaise hoga to uske bina to chal nahi sakta, ye to sabhi jante hain ki uske bina nahi chal sakta, lekin kehne ki zarurat hi na pade actually. और ये मुझे लगता है कि ब्रह्मा कुमारी में अपनी इतनी शक्ति है, इतना विश्वास है कि ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा ही.
एब्सोल्युटली, परमात्मा का ज्ञान एंड परमात्मा की गाइडलाइंस जो दी गई हैं संस्था को चलाने की, ये सारे जो गाइडलाइंस जो बहनें सब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं मिली तो परमात्मा शिव बाबा से है. और शुरू से ही कॉन्ट्रीब्यूशन तो बहुत दूर की बात के कंट्रीब्यूशन तो नहीं मांगना है, लेकिन जो कोर्स कराना है, जो सेवाएं करानी है, या आज हमारे इतने बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर्स हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, वहां हम कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स करते हैं, उसकी ट्रेनिंग फीस, या वहां जाकर रहना, यू नो, 4-5 दिन रहना, लॉजिंग बोर्डिंग, एवरीथिंग, नथिंग इज चार्ज. एंड दिस इज अ वेरी बिग अट्रैक्शन एक ऐसे समय में जहां कुछ भी फ्री नहीं मिलता. वहां पर आपको जीवन की सबसे वैल्यूएबल चीज फॉर फ्री मिलती है. ज्ञान, कोर्स, सेवा, पालना, परिवार, प्यार, एवरीथिंग अनकंडीशनल एंड विदाउट एनी कॉस्ट अटैच टू इट. तो शुरू में भी कई बार भाई बहने कहते थे कि कुछ भी नहीं लेंगे तो लोगों को, इट वॉज नॉट कि पैसे के बिना चलेगा नहीं, लेकिन बहुत बार जब नए लोग आते थे ना, वो कहते थे आपका कोर्स फ्री है ना, इसलिए कोई नहीं आता है. उनको लगता है फ्री में दे रहे हैं पता नहीं कौन सी चीज, क्योंकि फ्री में जनरली कोई ऐसी चीज बनती है जो कोई काम की नहीं है. बाहर आप जाकर देखो कोर्सेज की आजकल इतनी सारी फीस है तो लोग लाइन में लगे हुए हैं कोर्स करने के लिए. लेकिन परमात्मा ने कहा कि अगर 1 रुपया भी कॉस्ट होगी कोर्स के, तो कोई होगा जो वो 1 रुपया भी अफोर्ड नहीं कर सकता. पिता का ज्ञान हर बच्चे के लिए है एंड पिता अपने बच्चों से पैसे नहीं लेता, पिता तो सिर्फ देता और देता है. तो व्हेन वी कम टू द सेंटर वी जस्ट गेट एंड गेट एंड गेट, वी गेट सो मच, वो फिर आपका खुद से मन करता है. एंड वो भी हम परमात्मा को नहीं दे रहे, हम बहनों को भी नहीं दे रहे, हम उस सेंटर को चलाने के लिए कर रहे हैं ताकि जैसे हमारा जीवन परिवर्तन हुआ
औरों का होता
और आए और आए. आज रिट्रीट सेंटर क्यों खुल रहे हैं, और आए और औरों को भी वो मिले जो हमें मिल गया. क्योंकि बहनों की जीवन तो इतनी सिंपल है, मतलब दे रियली हार्डली नीड एनीथिंग, लेकिन सेंटर्स हमें बनाने, हमारा ये प्रयास रहता है हर थोड़े थोड़े एरिया में सेंटर बने, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है, बहुत ज्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते, तो वो सेंटर्स को कंस्ट्रक्ट करना और फिर उनको सस्टेन करना ताकि जो मुझे मिला वो औरों को भी मिले. एवरीवन डज इट ओनली विद दैट प्योर इंटेंशन. एंड हर सेंटर पे ऐसा डोनेशन बॉक्स होता है, किसी बहन को नहीं पता होता कि कौन उसमें कितना डाल रहा है. तो सपोज आज मेरे पास नहीं है, लेट्स से मेरी जॉब चली गई, मेरी सैलरी कम है, मेरे पास नहीं है डालने के लिए, लेकिन मुझे 100 रुपए डालने हैं, लेकिन अगर मुझे बहन के हाथ में पकड़ाने पड़े ना 100 रुपए, तो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा ना कि सिर्फ 100 रुपए मैं दे रही हूं, लेकिन मुझे चुपचाप जाके बॉक्स में डालना है. सो देयर इज नथिंग अबाउट कौन कितना डाल रहा है, किसने ज्यादा डाला, किसने कम कंट्रीब्यूट, सो ऑल दोज बैरियर्स जो हमें एक दूसरे से दूर कर देते हैं, दे आर फिनिश्ड. सेंटर पर बहनें आती हैं, यू नो, माताएं आती हैं जिनको बस का किराया मिलता है उनके बेटों से, यू नो, बुजुर्ग माताएं, वो पैदल चलकर सेंटर आती हैं और वो जो बस फेयर होता है ना 5-10 रुपीज, वो जाकर उस बॉक्स में डालती हैं. ऐसे सेंटर्स चलते हैं.
एक्चुअली इतना प्यारा है ये पूरा एहसास.
इट्स अ फैमिली.
यस शिवानी, अशोक भाई आपको हम नहीं जाने देंगे अभी. कुछ दिन आप हमारे साथ रहें, बहुत सी बातें आपके साथ शेयर कर रहे हैं और परिवार के बाकी लोग जो है वो भी सीख रहे हैं. आप दोनों आज थे, थैंक यू सो मच. ओम शांति. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही, आगे फिर मिलेंगे. ओम शांति.